माताओं में भक्ति भावना ज्यादा होती है, और भाई लोग जो बाहर की दुनिया में घूमते हैं और कुछ पढ़ाई लिखाई का भी प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो वो परंपरा को खत्म कर दिया टीका लगाना। माताओं को भी नहीं है और ज्ञान भातम भाइयों को भी नहीं है कि वो टीका क्यों लगाते हैं, माताएं बिंदी क्यों लगाती हैं। असलियत ये है, ये जो बिंदी यहाँ लगती है या टीका यहाँ लगता है, वो निशानी है आत्मा की टिकने की। तो आत्मा क्या चीज है, वो गीता में बताया है, अणोणियान समनुस्मरेति है। गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मा अणुरूप है, माने अति सूक्ष्म है, आत्मा ज्योतिर्मय है, ये बात गीता में बताई है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि आत्मा एक स्टार की मुआफिक है। ये गायन भी है, आसमान में 9 लाख सितारे हैं, 9 लाख सितारे आसमान के हैं, सृष्टि के भी 9 लाख सितारे चैतन्य हैं। वो जो 9 लाख सितारे आसमान में हैं, वो जड़ सितारे हैं, लेकिन जो धरती के सितारे हैं, वो चैतन्य आत्माएं हैं। जो पृथ्वी पे जो सृष्टि पर परिवर्तन होता है, वो जड़ सितारे परिवर्तन नहीं करते, वो सारी सृष्टि को परिवर्तन करने वाली है, क्योंकि जड़ में परिवर्तन की ताकत नहीं होती है। जो आत्मा चैतन्य है, उसमें परिवर्तन की ताकत है। जो आत्मा चैतन्य है, उस आत्मा के स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। अपने स्वरूप को जानेगी तो उस स्वरूप में टिकेगी। वो जानकारी कोई जानता नहीं है, की जानकारी जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो खुद ही देता है। परमात्मा आकर के बताता है, अभी आया हुआ है, बता रहा है कि तुम आत्मा स्टार के मुआफिक हो और आत्मा भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है। अगर इंदिरा गांधी को मारने वाला जानता होता कि आत्मा कहाँ है, तो वो यहाँ 27 गोलियां छाती में नहीं दागता। गोलियां दागी तो भी वो जिंदा बनी रहने की उनकी संभावना बनी रही। हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल में उनको चक्कर कटाया गया कि शायद जीवित हो जाए। वो जानता होता कि आत्मा यहाँ निवास करती तो एक ही गोली मार देता निशाने में, खिलखलास हो जाता। शरीर के कोई भी हिस्से में गोली मारी जाए तो आदमी जिंदा रहेगा, लेकिन अगर यहाँ गोली मारी जाए तुरंत, आत्मा यहाँ टिकी हुई है। शरीर एक मोटर है, ड्राइवर है। हाँ, तो अगर ड्राइवर को ही गोली मार दी जाए वो ड्राइवर तो गोली मारने से मर जाता है, लेकिन ये आत्मा रूपी ड्राइवर मरेगा नहीं, लेकिन भाग जाएगा। तो आत्मा तो अविनाशी है, तो वो अविनाशी ज्योति बिंदु हर एक मनुष्य आत्मा के भ्रकुटि के मध्य में निवास करता है। के मध्य में निवास करने वाली जो आत्मा है, वो 3 शक्तियां हैं उसमें, मन बुद्धि और संस्कार। 3 शक्तियां हैं आत्मा, बुद्धि और मन बुद्धि में समाये हुए अनेक जन्मों के संस्कार। जब आदमी मरता है, ये नहीं कहा जाता कि आत्मा निकल गई और मन बुद्धि रह गई। आदमी मर गया माना आत्मा की शक्तियां मन बुद्धि भी निकल गई। वो मन बुद्धि जो है वो ही आत्मा है। ये आत्मा जो स्टार की मिसल है, इसमें मन बुद्धि, मन माना सोचने विचारने की ताकत, बुद्धि का काम है फैसला करना। हमें दोनों शक्तियां भरी हुई है, विचारने की शक्ति भी मनुष्य आत्मा में है, तो फैसला करने की ताकत भी मनुष्य आत्मा में है। ये दोनों ही शक्तियां आत्मा कही जाती है। आत्मा स्टार जो है, जैसे ये आत्मा स्टार 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 स्टार, इन स्टार स्टार आत्माओं का बाप भी स्टार। ये 9 लाख सितारे हैं, स्टार रूप में स्थिर करने वाला, स्टार का ज्ञान देने वाला वो सुप्रीम सोल है, वो भी स्टार। वो स्टार सुप्रीम सोल जो है, वो हम स्टार आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। रूप शिवलिंग बनाया गया है पूजा करने के लिए। वो शिव जो है वो इस सृष्टि पर नहीं रहता है, का वासी है। तेरा धाम वो इस सृष्टि पर तब आता है जब ये सृष्टि में पाप बहुत बढ़ जाता है। इस सृष्टि में पाप कौन से युग में बढ़ता है, सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में? कब बढ़ता है? कलयुग में। तो कलयुग जो होता है, जब कलयुग में एटम बम बन जाते हैं, तो समझ लो अब इस कलयुग की सृष्टि का नाश होने वाला। बम बनना माना शंकर जी का काम शुरू होने वाला है। काम है पुरानी सृष्टि का विनाश। इसलिए तो उनके टाइटल दिया जाता है शास्त्रों में, हर हर बम बम। वो बम फोड़वाता है सृष्टि पर, तो सारे पापों का हरण हो जाता है, आपकी दुनिया ही खलास हो जाती है। ये निमित्त बनती है मूर्ति, हर हर बम बम शिव शंकर भोलेनाथ, ये उनका नाम के आगे टाइटल देते हैं कल्पांतकारी। शास्त्रों में लिखा है कलातीत कल्पांतकारी, कलातीत माने सूर्य है, सूर्य की कलाएं नहीं होती है, उनकी कलाएं होती है, कला संपूर्ण होता है ऐसी कही जाती है। जब चंद्रमा कलाहीन होता है तो अमावस्या कही जाती है, लेकिन जो शिव है शंकर है वो कभी कलाओं में नहीं बांधा जाता, कलाओं से परे है, अतीत है, वो इस सृष्टि पर आकर के सारी सृष्टि का परिवर्तन करने का निमित्त बनता है। तो शंकर का काम तो शुरू हो गया जब एटम बम बने, तभी शुरू हो गया, एटम बम फटेंगे तब जब इस दुनिया में ब्रह्मा की औलाद मुख वंशावली ब्राह्मण तैयार हो जाए। वो ब्राह्मण है दो तरह के होते, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण ढेर की ढेर तादाद में ब्रह्मा मुख ब्रह्मा से पैदा होते, एक होते हैं गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुख वंशावली ब्राह्मण होते हैं, वो ब्रह्मा के मुख से जो भगवान की वाणी निकलती है उस वाणी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वाणी को कहते हैं वेद वाणी। दूसरा नाम शास्त्र में दिया है मुरली, भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो बड़ी की बड़ी माँ बनकर के आता है बसाने के लिए, वो पहले ब्राह्मण बनाता है, ब्राह्मण पेट के ब्राह्मण नहीं, गर्भ से पैदा होने वाले ब्राह्मण नहीं, ज्ञान से पैदा होने वाले ब्राह्मण। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख में से ब्राह्मण पैदा हुए, पंडित आचार्यों ने ये समझ लिया कि ब्रह्मा के मुख में कोई मशीन रखी होगी और मशीन में से वाह किया और ब्राह्मण निकल पड़े होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो सिर्फ ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान को बुद्धि में धारण करते हैं और उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन में आचरण करते हैं। वो ज्ञान माउंट आबू से ब्रह्मा मुख के द्वारा सन 51 से लेकर के 68-69 तक 18 साल सुनाया गया। उस संस्था का नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से निकलने वाले तैयार होने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो गांव गांव में शहर शहर में देश देशांतर में सभी देशों में उसकी संख्याएं शाखाएं खुली हुई है। ब्राह्मण तो तैयार हुए लेकिन उनमें जो दोनों तरह के ब्राह्मण घुसे हुए हैं, अच्छे वाले ब्राह्मण पुरुषार्थी ब्राह्मण जो मुख से पैदा होते हैं और दुष्ट ब्राह्मण जो ब्रह्मा की गोद से पैदा होते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के शरीर का आकर्षण से पैदा होते हैं, वो है आसुरी ब्राह्मण। ए भान की औलाद है वो है आसुरी ब्राह्मण, मुख की संतान है, मुख का ज्ञान सुन करके अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, दूसरों के जीवन को परिवर्तन करते हैं, वो है मुखवंशावली श्रेष्ठ थोड़े से ब्राह्मण। अभी दोनों तरह के ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में सारी दुनिया में फैले हुए, जो डायरेक्ट सूर्य की संतान बनते हैं। हमें लिखा हुआ है भगवान ने जब ज्ञान सुनाया तो पहले पहले सूर्य को सुनाया, तो सूर्य ने अपने सूर्य पुत्रों को समझाया, वंशियों को। हाँ, वो सूर्यवंशी बच्चे जो है वो शुरू शुरुआत में जब एटम बम बने थे 42-45 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बमों का विस्फोट हुआ था, तो 20-20 मेगावाट के एटम बम बने थे। अभी तो हजारों हजार मेगावाट के बम जो हैं वो दुनिया में बड़े बड़े देशों के पास बने हुए पड़े हैं, ऐसे हैं जिनके पास गुप्त में बनाए हुए पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो बम फटेंगे नहीं, जब ईश्वर का काम पूरा होगा, ब्राह्मणों सो देवताओं का संगठन तैयार हो जाएगा, ब्राह्मणों का किला बन जाएगा, वह उसके बाद वो एटम बम फट पड़ेंगे। जब तक नई दुनिया का संगठन तैयार नहीं होता है, नई दुनिया ब्राह्मणों की संगठन की दुनिया तैयार नहीं होती है, छोटा सा संगठन, तब विनाश नहीं होगा। भगवान जो है वो ज्ञान के द्वारा उन सूर्यवंशी बच्चों की गीता पाठशालाओं में स्थापना करा रहा है, बाकी जो आसुरी ब्राह्मणों की दुनिया है वो बाद में खलास हो जाएगी। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय तो आज सबकी नजरों के सामने है, क्योंकि हर गांव गांव में शहर शहर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुला हुआ है, लेकिन जो ब्रह्मा के सूर्य पुत्र हैं सूर्यवंशी बच्चे वो सबकी नजरों में नहीं है। तो पांडव बन करके घूम रहे जितने भी ब्रह्मा वत्स हैं, चाहे वो आसुरी ब्रह्मा वत्स हैं चाहे वो दैवीय ब्रह्मा वत्स हैं, उनके बीच में वो जाकर के अपना ज्ञान का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी गीता पाठशालाएं ऑल इंडिया में खुली हुई है, गीता पाठशालाएं हैं, उनका संचालन युगलों के हाथ में दिया जाता है। नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। दुनिया में जो पाठशालाएं होती हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, उनमें एक जन्म के लिए डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं और मास्टर बनाए जाते हैं, लेकिन देवता कोई नहीं बनाता। उन देवताओं को राजयोग कोई नहीं सिखाता सिवाय भगवान के। को सीख करके वो देव आत्माएं जन्म जन्मांतर के लिए राजा ही प्राप्त करती है। हिस्ट्री में छोटे छोटे बड़े बड़े राजाएं हुए हैं, महाराजाएं हुए हैं, उन राजाओं को महाराजाओं को राजा ही करना किसने सिखाया? कोई जवाब नहीं दे सकता। बताता है ये राजयोग मैं सिखाता हूँ, सिखाता हूँ तो बच्चों को अधिकारी बनाता हूँ। अंग्रेज गवर्नमेंट इंडिया में आई, उन्होंने नौकरी करना सबको सिखा दिया, कर माना दास दासी। भगवान आता है तो कहता है बच्चे तुम नौकर नहीं हो, तुम तो आखिरी जन्म में आकर के विदेशियों विधर्मियों के संग के रंग में आकर के इनकी दास दासी बन पड़े। अब तुम दास दासी मत बनो, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हूँ, अधिकारी बनाने आया हूँ। है तो अधिकारी बनो, आधीन न बनो। संगम युग चल रहा है, जब भगवान के आने का टाइम होता है इस सृष्टि पर। संगम युग माना कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का टाइम। अभी जो टाइम चल रहा है वो अब कलयुग का अंत आने वाला है और सतयुग शुरू होने वाला है। जो है वो सच्चा ही स्थापन कर सकता है। दुनिया में सब झूठे हैं, अभी इस सृष्टि पर सच्चा है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, सच्चा है, एक परमात्मा ही सच्चा है, बाकी इस दुनिया में सब झूठे हैं। तो सत्य परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो सतयुग की स्थापना करता है और अपने सच्चे बच्चों को इकट्ठा करता है। बार जो सच्चे बच्चे हैं, दिल के सच्चे बच्चों को बाप परमात्मा आकर के इकट्ठा कर रहे हैं। दुनिया की हर धर्म की आत्माओं में श्रेष्ठ आत्माएं हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं में से जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं उन सबको इकट्ठा करके ब्रह्मा की औलाद बना रहा है। कुमार कुमारी माने ब्राह्मण अभी इस सृष्टि पर अपना कार्य प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। जो ब्राह्मण कहे जाते हैं वही ब्राह्मण अपना परिपूर्ण पक्का पुरुषार्थ जब करते हैं तो देवता कहे जाते हैं। अभी ब्राह्मणों की सृष्टि लगभग तैयार है, अभी सिर्फ ब्राह्मणों को प्रत्यक्ष होना है। नवकुरी के ब्राह्मण गाए जाते हैं, कहते हैं ना नव गोत्र के ब्राह्मण होते हैं। तो दुनिया में भी नौ मुख्य धर्म है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो हिंदू कहे गए और उसके बाद इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन वगैरह वगैरह नौ और हैं। ये नौ धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माएं खिंच रही है और नवकुरी की ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली डायरेक्ट अब तैयार हो चुके हैं। उनमें से सिर्फ 9 लाख आत्माएं ऐसी निकलेंगी टोटल सारी दुनिया में से, जो भगवान के गले का हार 9 लाखा हार कहे जाते हैं। हाँ जी, वो 9 लाख आत्माएं जब विनाश शुरू होगा तो सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगी। उस समय सारी दुनिया में ज्ञान का धंधा बहुत चलेगा, धंधे खलास होने वाले हैं। इसलिए स्लोगन दिया जाता है भगवान के द्वारा, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ही छोड़िए धंधे के। अभी कलयुगी तरीके से जो धन कमाया जा रहा है, कलयुग में जो धन कमा रहे हैं लोग आसुरी वृत्तियों से, वो धन के 4 अंजाम होने वाले हैं। वो धन कोई नौकरी से कमा रहा हो, चाहे वो धन कोई धंधे से कमा रहा हो, चाहे वो धन कोई चोरी चकारी से कमा रहा हो, लेकिन धन जो है वो किसी का काम आने वाला नहीं है। के 4 अंजाम है, दबी रही धूल में किसकी राजा खाए और किसकी ले जाएंगे चोटा और किसकी आग जलाए, किसकी आग जलाए, किसकी ले गई चोटा, किसकी आग जलाए। माने धन जो है किसी का अब रहने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाते चले जा रहे हैं, बैंकों में पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, विदेशी बैंकों में पैसा इकट्ठे कर रहे हैं नेताएं लोग, लेकिन किसी का कुछ काम नहीं आने वाला है। देश देशांतर की जो भी हर देश की करेंसियां हैं वो भी फेल हो जाएंगी, वो काम नहीं करेंगे। नोट गड्डियां सड़कों में पड़ी रह जाएंगी और अकाल पड़ेगा तो लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो ईश्वर के नाम से ईश्वरीय कार्य में जिन बच्चों ने अपना धन लगाया हुआ है, लगा रहे हैं, उन बच्चों की भगवान बाप मदद करेगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों की बाजी भी लगा रहे हैं, ऐसे पांडव बच्चे अभी भारतवर्ष में गुप्त रूप में घूम रहे हैं और थोड़े समय के अंदर वो पांडव संसार में प्रत्यक्ष होने वाले और उनके द्वारा वो नई दुनिया का संगठन तैयार होगा जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। राजा इंद्र के द्वारा बनाई हुई नगरी। इंद्र कोई अलग से कोई देवता ऐसा नहीं होता है जो पानी की बरसात बरसाता हो, पानी की बरसात की बात है, है सतयुग का, उसी का नाम है इंद्र। सतयुग के आदि में जो नारायण का पार्ट, जो डायरेक्ट नरसिंह नारायण बनता है, इंद्र का पार्ट है। इंद्र जो है अपने नाम से इंद्रप्रस्थ नगरी बनाता है और वो सतयुग की दुनिया कही जाती है। वो नई दुनिया अभी आई की आई, कि जितने भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन किया है। वो इस्लाम धर्म स्थापन करने वाले, चाहे क्राइस्ट हो क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने वाले, चाहे मोहम्मद हो मुस्लिम धर्म स्थापन करने वाले, चाहे महात्मा बुद्ध हो बौद्ध धर्म स्थापन करने वाले, सबने ज्यादा से ज्यादा 100 साल का टाइम लिया कराता है। तो सब धर्मों का विनाश और एक सद धर्म की स्थापना कराता है सनातन धर्म, और 100 साल का टाइम लेता है। वो 100 साल में से 70 साल अभी पूरे होने जा रहे, और उन 70 साल के अंदर 2 मूर्तियां भी शिव की प्रत्यक्ष हो गई। वो मूर्तियां भी मूर्ति शिव की 2 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई, क्योंकि शिव जो है उसको अपना शरीर नहीं होता, चक्र में नहीं आता, इसलिए वो 3 मूर्तियों का कार्यकाल 70 साल पूरा हुआ, 36 से लेकर के और 2005 खत्म होने वाला है। सिर्फ तीसरी मूर्ति रह गई है विष्णु की प्रत्यक्ष होने को, उनका काम पूरा हो जाएगा। आज इस दुनिया में विनाश शुरू होगा, भगवान वापस जाएगा और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। माना 100 साल पूरे होते होते 2036 में, और ये जो दुनिया फैली हुई दिखाई दे रही है 500-700 करोड़ की दुनिया, देशांतर में बड़े बड़े शहर है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, वो सारी दुनिया नष्ट होने वाली है। बीच भारतवर्ष के अंदर एक छोटा सा संगठन तैयार होगा, स्वर्गीय संगठन वैकुंठ। ऐसी भगवान की जो रचना है ना, दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं बना पाया। मन का ही काम है नरक की दुनिया खलास करना और स्वर्ग की दुनिया बनाना। मनुष्य गुरु 2500 साल की हिस्ट्री में अपना अपना काम करते रहे, लेकिन दुनिया को नरक बनाते रहे, खराब हो गए हैं, राक्षस बन गए हैं। दुनिया में कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि हम मन से, दृष्टि से, वाचा से, कर्म इंद्रियों से किसी को दुख नहीं देते। भाई को कहा जाता है राक्षस, कंस, दुशासन, और जो सुख देते हैं उनको कहा जाता है देवता। ये देवताएं 500-700 करोड़ की दुनिया के अंदर सिर्फ 33 करोड़ निकलेंगे। उनका चुनाव अभी इस दुनिया से हो रहा है, भगवान का ज्ञान सुनेंगे। बाकी ये 500-700 करोड़ की दुनिया भगवान का ज्ञान एक कान से सुनेगी, दूसरे कान से निकाल देगी और न दूसरों को धारण करने देंगे। सब खलास होने वाले। अभी जो भगवान के बच्चे हैं वो है देवात्मा, रावण के बच्चे हैं वो है असुर। रावण की लड़ाई चल रही है, राम रावण की लड़ाई कोई त्रेता में नहीं हुई थी, त्रेता के बाद कोई स्वर्ग स्थापन हुआ था की बात है। इस समय भगवान राम इस सृष्टि पर आता है और आकर के राम राज्य की स्थापना करता है। ये राम के राज्य की स्थापना में गांधी जी ने अपनी कितनी ताकत लगाई, सारे देश के मनुष्यों की, 40-50 करोड़ मनुष्यों की सारी शक्ति जो है वो राम राज्य की स्थापना में लगा दी। लेकिन अभी राम राज्य स्थापन हुआ है कि भारतवर्ष में और ही रावण राज्य बन गया है। मैं गांधी जी के द्वारा जो राम राज्य की स्थापना हुई वो राम राज्य चल रहा है कि और ही ज्यादा रावण राज्य हो गया, और ही रावण राज्य बन गया। मनुष्य का काम नहीं है राम राज्य स्थापन करना, राम की आत्मा ही कलयुग के अंत में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है और वो विश्वनाथ शंकर कहलाती है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करती है। अभी ये काम चल रहा है रामकृष्ण का। रामकृष्ण की आत्मा सतयुग में भी थी, त्रेता में थी, द्वापर में भी थी, अभी कलयुग में भी कोई न कोई दूसरे नाम रूप से होती है। अभी इस आखिरी जन्म में कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में माउंट आबू से कार्य करती है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, अब शंकर के रूप में पार्ट हो जाती है। जो कार्य चलता है उसमें परमात्मा से डायरेक्ट प्रवेश करके पुरानी दुनिया का संहार और नई दुनिया का संगठन तैयार करा। अभी टाइम ज्यादा नहीं है, से ज्यादा टाइम खत्म हो गया, अभी 1/3 टाइम रह गया। 2 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई है, भी प्रत्यक्षता हो गई, शंकर की भी प्रत्यक्षता हो चुकी। ये ज्ञान से समझने की बात है, न शिव को देखा जा सकता है न राम को देखा जा सकता है और न कृष्ण को देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान तो इस सृष्टि पर साधारण तन में आता है। गीता में भी लिखा हुआ है, मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूलमती लोग नहीं पहचान पाते। हाँ, नहीं पहचान पाते। तो अगर असाधारण रूप में आए फिर तो सारी दुनिया पहचान लेगी। साधारण रूप में आता है, ये दुनिया नहीं पहचानेगी, लेकिन बाप के जो बच्चे होंगे वो पहचान लेते हैं कि बच्चे देवात्माएं ही हैं। युग त्रेता में देवताएं थे, युग की दुनिया में आकर के जन्मान के चक्र में आते आते मनुष्य बन गए, और अभी आखिरी जन्म में आकर के सब दुखदायी राक्षस बन जाते हैं। यहाँ तक कि राम वाली आत्मा वो भी अंतिम जन्म में आकर के रावण जैसा पार्ट हो जाती है, और सत्युग की आदि में ही कृष्ण नारायण जैसी जो आत्मा है वो भी जन्म मरण के चक्र में आते सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में आकर के कंस का पार्ट हो जाती है। ऐसे कंसी जरासिंधियों राम रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ जैसों को भगवान आकर के असुर से देवता बनाता है। अपने अवगुणों को नहीं देखना है अभी कि हमारे हम तो नहीं सुधर सकेंगे। भगवान कहते हैं कोई कितना भी पतित से पतित हो लेकिन अगर मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसको मनुष्य से देवता बनाऊंगा। इसलिए भगवान के लिए गाया जाता है पतित पावन सीताराम का सदगति दाता राम, एक है निराकार राम बिंदु और एक है सृष्टि पर साकार राम। वो निराकार राम शिव इस सृष्टि के साकार राम में प्रवेश करता है, शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। ओम शांति। मूर्ति शिव, त्रिमूर्ति शिव जो है उससे साबित होता है कि एक मूर्ति शिव नहीं है। बिंदु को मूर्ति नहीं के, मूर्त माने साकार, मूर्त माना साकार, और अमूर्त माना इसका आकार साकार न हो। मूर्ति माना साकार और अमूर्त माना निराकार, जिसकी मूर्ति न हो। तो बिंदु को तो अमूर्त कहेंगे। तो जयंती का जहाँ सवाल होता है, जयंती साकार की होती है, जन्मदिन साकार का मनाया जाता है या निराकार का मनाया जाता है? जब बच्चा पैदा होता है जब तक आत्मा गर्भ में है, प्रत्यक्ष नहीं हुई है, तो जयंती नहीं मना सकते, जन्मदिन नहीं मना सकते। तो त्रिमूर्ति शिव भी गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, लेकिन संसार में आता है तो प्रत्यक्ष तो होता है। तो प्रत्यक्ष होता है तो एक मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, दो मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, या तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? अगर तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाए। माना तीनों मूर्तियां जब तक प्रत्यक्ष न हो संसार में, तब तक ये गायन नहीं हो सकता, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडे में तीन कपड़े है ना, त्रिमूर्ति की यादगार है ना। कपड़ा माना शरीर, शरीर रूपी वस्त्र है, तीन दिखाए गए, तीन शरीर रूपी वस्त्र जो है विश्व विजय करके दिखलावे, न कि एक शरीर रूपी वस्त्र विजय करके दिखलावे। तो कौन करो ना, तो हमें क्या मालूम।
तो तीन शरीर रूपी वस्त्र की यादगार झंडा है,
वो झंडा कपड़े का झंडा बुलंद करने से त्रिमूर्ति शिव की आवाज संसार में फैल जाएगी। त्रिमूर्ति शिव बुलंद हो जाएगा संसार में, या उसकी जो तीन मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो संसार वालों को हम बता दें।
ये तीन मूर्तियां
हैं जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करती हैं।
एक मूर्ति नहीं, ब्रह्मा की मूर्ति से नहीं होगा। अगर ब्रह्मा की मूर्ति से ही प्रत्यक्षता हुई होती तो ब्रह्मा और शिव को मिला दिया जाता, ब्रह्मा शिव बाप समान हो जाता, और ब्रह्मा शिव बाप समान हो जाता तो ब्रह्मा का नाम शिव के साथ मिला दिया जाता। न ब्रह्मा का मिलाया जाता, न विष्णु का मिलाया जाता, मिलाया जाता है शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता। माना तीन मूर्तियों में एक ही देव देव महादेव की मूर्ति ऐसी है जो शिव के साथ जिसका नाम मिलाकर एक कर दिया जाता है, यानी बाप समान बन जाता है। तीन मूर्तियों में एक मूर्ति बाप समान बनती है और दो मूर्तियां बाप समान नहीं बनती, इसलिए उनका नाम नहीं मिलाया जाता। उनमें भी एक मूर्ति ब्रह्मा की जो सहकारी सृष्टि की नजदीक दिखाई जाती है, तीन तबके है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो जो साकार सृष्टि के नजदीक जो मूर्ति दिखाई जाती है ब्रह्मा की, उस मूर्ति की मंदिरों में पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनाए जाते, सिर्फ दो मूर्तियां ऊपर की हैं, विष्णु और शंकर, उनकी पूजा भी होती है, उनके मंदिर भी बनते हैं, उनकी मूर्तियां भी बनती हैं। उन दोनों मूर्तियों में एक मूर्ति का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है और एक मूर्ति का नाम सिर्फ गायन है, पूजन है, लेकिन नाम शिव के साथ मिक्स नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि विष्णु की जो मूर्ति हुई है चैतन्य में, वो फिर सिर्फ देवताओं को सहयोग देती है, देवताओं को वरदान देती है, देवताओं और असुरों सबको वरदान नहीं देती, वो सिर्फ देव कल्याणकारी है, सारा विश्व कल्याणकारी नहीं। शिव की जो मूर्ति है, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे पतित हो चाहे पावन हो, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, सबके लिए कल्याणकारी। माना ब्रह्मा की मूर्ति में भी पार्शियलिटी है, विष्णु की मूर्ति में भी पार्शियलिटी है, संपन्न नहीं है, लेकिन जो शंकर की मूर्ति है उसमें पार्शियलिटी बिल्कुल, जो भस्मासुर है उसको भी वरदान दे देता है। भोलानाथ है तो शिव, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव का टाइटल है भोले, दूसरा टाइटल है भाले, पहला नाम है शिव, दूसरा नाम है शंकर, पहले का पहले टाइटल, शिव का टाइटल भोले, दूसरे का नाम है शंकर, और उसका दूसरा टाइटल जिसका वो शंकर के साथ जो टाइटल लगता है वो है भाले। भाला जो है, भाला सुना, भाला क्या होता है? नहीं, भोले तो शिव है, वो भाला होता है, ऐसे मारा जाता है, नहीं उसमें इतना लंबा लोहे का कांटा होता है, त्रिशूल में बीच वाला कांटा, उसको कहते हैं भाला, भाला माना बड़ा कांटा। तो शिव है भोला और शंकर है भाला, शंकर को भोला नहीं कहेंगे, शिव का टाइटल भाला नहीं है, शिव किसी के लिए भाला नहीं है, माने कांटे का काम नहीं करता, कांटा माने दुखदाई, शिव माना कल्याणकारी। लेकिन शिव की सोल में और शंकर की सोल में अंतर क्या है? विश्व कल्याणकारी दोनों हैं, शिव भी कल्याणकारी है, शंकर भी कल्याणकारी है, लेकिन शिव सदा शिव है और शंकर सदा शिव नहीं है। अगर असुर हैं तो असुरों के लिए कल्याणकारी तो है अंदर से, लेकिन उनको सुधारने के लिए वो भाला का रूप धारण करता है। शिव जो है वो सदा कल्याणकारी है, सदा सुखदाता है, कभी दुखदाता नहीं है, लेकिन शंकर को निमित्त बनाता है कि जो नहीं सुधरते हैं उनके लिए तू भाले का रूप धारण कर, क्योंकि नियम है कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है, इसलिए शिव शंकर के तन में आकर के कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ, मुरली बोलते हैं ना, बच्चे तुम्हारा बाप आया हो, तो हम सामान्य रूप में पढ़ लेते हैं सुना देते हैं, लेकिन उसका असामान्य रूप भी है पढ़ने और सुनाने का, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, माना अच्छे अर्थों में भी बाप आया हुआ है, गुणों के आधार पर भी तुम्हारा बाप आया हुआ है, अगर अवगुण धारण करते हो तो अवगुणों के आधार पर भी तुम्हारा बाप आया, तुम इतने अवगुण धारण नहीं कर सकते, मैं तो इतने अवगुण धारण कर सकता हूं कि अति ला करके अंत कर देता हूं, इसलिए मुरली ने बोला है पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। तुम्हारे द्वारा 100% पाप की दुनिया नहीं बनेगी। मैं इस दुनिया को ऐसा पार्ट बजाता हूं जिससे ये 100% पाप की दुनिया बन जाए और तुम्हारा जल्दी से दुखों से छुटकारा हो जाए। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, स्थापना दो तरह की होती है। एक होती है ब्राह्मण धर्म की स्थापना और एक होती है देवता धर्म की स्थापना। ब्राह्मण धर्म की स्थापना दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा से होती है। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा देवता धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। क्यों?
शंकर को भी तो दाढ़ी मूछ।
रुको, तो दाढ़ी मूछ वाला जो है वो देवता धर्म की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाई जाती इसलिए कि वो मनुष्य थे। 100 साल की आयु में ब्रह्मा मृत्यु लोक में खत्म हो जाता है। मृत्यु लोक में जन्म लेना, मृत्यु लोक में खत्म हो जाना, ये मनुष्यों का काम है। देवताएं देवलोक में जन्म लेते हैं और देवलोक में ही शरीर छोड़ते हैं। तो ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ऐसा मुरली में भी बोला। देवताओं का रूप है विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुले भी नहीं, मूर्ति खलास हो गई। अब फिर ब्रह्मा के द्वारा गेट कैसे खुलेंगे? स्वर्ग के गेट तो मैं ब्रह्मा के द्वारा खोलता हूं और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब गेट कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा? तो बताया, माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता हूं, माने ब्रह्मा की सोल, माना दादा लेखराज की सोल, कोई न कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करती है। गुलजार दादी में नहीं, गुलजार दादी में जो सोल प्रवेश करती है वो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है। वो ऐसी ब्राह्मणी में प्रवेश करती है जो रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के मणके हैं आपस में भाई भाई, आत्मा आत्मा, माने जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाले हैं वो है रुद्रमाला के मणके। तो उन रुद्रमाला के मणकों में एक है जगत पिता शंकर और दूसरा है जगदम्बा माता। जगत पिता और जगदम्बा, जगदम्बा में जहां भी मूर्ति जगदम्बा की होगी या महाकाली का रूप जगदम्बा पकड़ती है तो मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। जैसे शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है, शंकर के मस्तक में भ्रुकुटी में तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाया जाता है। इसकी निशानी है दोनों आत्माएं प्रवेश करती है, शिव भी प्रवेश करता है और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी प्रवेश करता है, दोनों ही प्रवेश करते हैं, इसलिए उसका नाम है शंकर। शंकर माने मिक्स, जैसे कहते हैं वर्ण शंकर। तुलसीदास ने रामायण में 500 साल पहले लिख दिया, कोई ब्राह्मण नहीं रहा, भय वर्ण शंकर सब है, सब वर्ण शंकर हो गए, सब शूद्र हो गए कलयुग में। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो शंकर इस सृष्टि पर सबका पाप वो प्रत्यक्ष होता है और शिव उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है और मुकर्रर रूप से पाप बन कर सकता ब्रह्मा के द्वारा टेम्परेरी रहते और शंकर के द्वारा मुकर्रर रहते। मुकर्रर माना कांस्टेंट, आज में भी था और अंत में भी रहता है, उसको कहते हैं मुकर्रर। यज्ञ के आदि को भी देखता है और जब 16,108 9 लाख की दुनिया स्थापन होती है 100 वर्ष का संगम पूरा होने पर तब भी सृष्टि को मौजूद रहता है। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में एक ही देवता ऐसा है जिसके लिए कहते हैं कि उसको जन्म लेते किसी ने नहीं देखा और उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होती। माने जब इस दुनिया का विनाश होता है तो वो सबकी मौत होते हुए शरीर छोड़ते हुए सबको देखता है, लेकिन उसको शरीर छोड़ते हुए कोई नहीं देखता। इसलिए एक शंकर ही देवता ऐसा है जिसकी उम्र नहीं गिनी जाती, वो आदि पिता है और अंत पिता भी है। तो शंकर को जो शंकर कहा जाता है उसका मतलब यह है कि दुनिया में तीन तरह की जो आत्माएं हैं, एक वो आत्माएं जो अपने धर्म में आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म की पक्की रहे, उनका भी बाप है, और दूसरी वो आत्माएं हैं जो आदि से देवी देवता सनातन धर्म में तो रहती है लेकिन बाद में बाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट हो जाती, माना भारतीय धर्मों में कन्वर्ट हो जाती, उनका भी बाप है। और एक वो आत्माएं हैं जो देवी देवता सनातन धर्म में भी रहती है और फिर द्वापर उसे बाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। तो तीनों प्रकार की आत्माओं का वो बाप है और सभी आत्माएं उसको बाप के रूप में ब्रह्मा के रूप में जब तक अधूरा चंद्रमा है, सूक्ष्म शरीर का भाव जब तक रह जाता है तब तक दूसरे धर्म की आत्माएं उसको फरिश्ते के रूप में मानती है। इस्लाम धर्म वाले, मुस्लिम धर्म वाले अपने झंडे में भी अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने उससे पालना ली है। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो चंद्रमा से पालना नहीं लेते। सूर्य किससे रोशनी लेता है? सूर्य स्वयं प्रकाशित है। और चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। तो यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा जो भागीदार थी, उस आत्मा के द्वारा ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन सारे यज्ञ के ब्राह्मणों को मिला। ये ज्ञान की रोशनी, ज्ञान सूर्य राम के द्वारा सबको मिली। इसीलिए गीता में कहा गया है अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं, ज्ञान का बीज बोता हूं। यज्ञ के आदि में ये ज्ञान का बीज बोया गया राम वाली आत्मा। इसलिए मुरली में हमेशा आता है राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कृष्ण बच्चा है, रचना है, राम बाप है, रचयिता है। तो राम सूर्यवंशी सूर्य और कृष्ण चंद्रवंशी चंद्र, चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी आज से अंत तक पलती है। जो सूर्यवंशी आत्माएं थी वो यज्ञ के आदि में जब तक राम की आत्मा रही तब तक रही, और जैसे ही राम की आत्मा चली गई, जिसके लिए बोला राम फेल हो गया, राम की आत्मा गई तो राम के पीछे पीछे सारे सूर्यवंशी चले गए। फिर 69 में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जितने भी सूर्यवंशी थे वो राम के पीछे फिर आने लगे और वो बाद में एडवांस पार्टी के नाम से प्रत्यक्ष होते। बाकी पार्टी बाजी की कोई बात नहीं है,
ये ब्रह्मा पार्टी,
शंकर पार्टी या विष्णु पार्टी, ये बाबा की भाषा नहीं है, ये देहधारी गुरुओं की भाषा है। कि शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, ये पार्टी बाजी नहीं, शूटिंग की है। 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री मिल रही है उसमें ब्रह्म समाजी हुए, शैव संप्रदाय वाले हुए, वैष्णव संप्रदाय वाले हुए, ये आपस में टकराते रहे। हम तो विश्व कल्याणकारी सूर्य के बच्चे, सूर्य किसी को रोशनी देता है किसी को नहीं देता है ऐसा नहीं होता, सूर्य सबको बराबर रोशनी देता है। तो जो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं वो किसी पार्टीबाजी में बंधने वाले नहीं है, लेकिन सूर्य और सूर्यवंशी बच्चों में इतनी ताकत जरूर है कि अगर कोई अपनी अति पर उतरता है और विश्व का कल्याण अंत तक करता रहता है, तो वो उनको जला के खाक कर देता है। इसकी यादगार राम रावण का युद्ध दिखाया जाता है। रावण को ज्ञान के बाण मार मार के जला के खाक कर दिया। स्थूल आग से जलाने की बात नहीं है, कोई ऐसे अग्नि बाण नहीं होते हैं, ये है दिल को जलाने वाले बाण, हृदय को छलन ही करने वाले बाण, ये ज्ञान के बाण है। मुरली वही है, लेकिन मुरली के अर्थ ऐसे निकलते हैं कि जो आधुनिक प्रकृति की आत्माएं हैं उनको बाण जैसे लगते हैं और वो सहन नहीं कर पाती, सामने से कभी मुकाबला नहीं करती, पीछे से वार करती है, खुद भी बिगड़ती है और संसार की आत्माओं को भी बिगाड़ती है। आप गए और घाल है, खुद तो गड्ढे में जाते ही है और साथ साथ अपने संगी साथी जो भी है उन सबको गड्ढे में ले जाते, खुद का भी कल्याण नहीं कर पाते और अपने संगी साथियों का भी कल्याण नहीं कर पाते, उनका भी कल्याण कर। ऐसी हट्टी आत्माएं होती है
जिसके लिए बोला है कुत्ते की पूछ 12 साल के लिए जमीन में डंडे में बांध के गाड़ दो और 12 साल के बाद जब निकलेगी तो फिर देवता धर्म की वो आत्माएं हैं, कच्ची कन्वर्ट होने वाले देवताएं, कम कला वाले देवताएं, जो द्वापर युग से इस्लाम धर्म आता है तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होके चली जाती है। देवता धर्म की ही आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई है, कन्वर्ट नहीं हुई। ये कन्वर्ट होने वाले देवताएं बहुत खतरनाक है, ये खुद भी गड्ढे में जाते हैं, अपना धर्म छोड़ते हैं पर धर्म अपनाते हैं और दूसरों को भी गड्ढे में ले जाते हैं, पर धर्म भयावह में ले जाते हैं। बाप सुप्रीम सोल कलयुग के अंत में तब आते हैं जब सब नीचे गिर जाते हैं। 750 करोड़ मनुष्य आत्मा, 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, आसुरी आत्माओं के बीच में 33 करोड़ देवताएं, धोखा देने वाले 32 करोड़ 90 लाख देवताएं ऐसे हैं जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं और पक्के भारतवासियों को धोखा देते हैं। 9 लाख आत्माएं ऐसी हैं सभी धर्मों
को मिलाकर के 90 लाख,
700 करोड़ सारे मनुष्य आत्माएं हैं। उन 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जो उनमें से सिर्फ 9 लाख निकाल लो, वो 9 लाख देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होते हैं पूरे 84 जन्म लेने वाले और बाकी सब कन्वर्ट होने वाले, जितने भी हैं वो सारे कम कलाओं वाले, वो पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, बात मानते हैं और 10 बातें नहीं मानते और एडवर्टाइजमेंट ऐसा करते हैं कि हम बहुत ऊंचे ब्राह्मण है, कि ब्राह्मणों के लिए मांगने से मरना वाला, वो इस धारणा को बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाई। बाबा ने मुरली में बोला ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, जरूर रखेंगे, मानते हैं हम ब्रह्मा का फोटो रखेंगे, सरस्वती का फोटो रखेंगे तो हमारे जो फॉलोअर्स आएंगे वो हमारा फोटो रखेंगे, तो कोई भी ईश्वरीय धारणाओं को पक्का करके नहीं मानते, वो प्यार करते हैं ब्रह्मा की देह से प्यार लेते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा ही याद आता है, की याद आने के कारण उनको बिंदु शिव की याद नहीं आती और ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो बिंदु शिव किसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है उस बात को बिल्कुल नहीं पहचान सकते, पहचान नहीं सकते तो खुद भी मुगालते में रहते हैं और दूसरों को भी मुगालते में डालते हैं। तो ऐसे कन्वर्टेड होने वाले जो ब्राह्मण हैं उनमें 9 प्रकार के ग्रुप हैं, उनमें 9 कुरी के ब्राह्मण गाए गए,
ब्राह्मण चांडिल्य गोत्र है, कश्यप गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, 9 प्रकार के ब्राह्मण है। सबसे ऊंचा गोत्र जो है वो माना जाता है काश्यप गोत्र, काश्य माने तेज, तेज 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 प्रकाश, जो याद का तेज पीने वाले हैं, काश्य माने तेज, पा माना पीना, जो याद का तेज रूपी प्रकाश पीने वाले हैं वो हैं काश्यप गोत्र के ब्राह्मण। वो किसी भी हालत में ब्रह्मा के फोटो को याद भी नहीं करेंगे, ब्रह्मा का फोटो रखेंगे भी नहीं, और शिव की याद उनको सहज आएगी। शिव की स्मृति में परिपक्व होते हैं, और ऐसे ही नहीं कि वो निराकार को ही याद करते हैं। शिव के दो रूप हैं, एक माता का रूप और एक पिता का रूप। माता का रूप जो शिव का है उसे कहा जाता है ब्रह्मा या जगदम्बा। ब्रह्मा का भी अर्थ वही है, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, मन बड़ी माँ। और वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद किसी ब्राह्मणी बच्ची में जब प्रवेश करता है रुद्रमाला के मणके में, तो वो संपन्न बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है जगदम्बा। जगदम्बा कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सारे जगत की अम्बा और ब्रह्मा। बड़ी अम्मा कहो चाहे जगदम्बा कहो, बात तो एक ही हो। वो पुरुष रूप है इसलिए उसकी पूजा नहीं होती, और वो स्त्री रूप है इसलिए वो पवित्रता को धारण कर लेती है। सब पुरुषों को मुरली में बताया है दुर्योधन दुशासन, सब स्त्रियों को नहीं बताया है कि सब स्त्रियां सुपन खा पूतना होती है। इसलिए जगदम्बा अपनी भुजाओं के साथ स्वर्ग का गेट खोलने के लिए, और बाप उसको निमित्त बनाता है। तो ये जगत पिता और जगदम्बा की जोड़ी संगम युग की जोड़ी है। संगम युग में ऊंचे ऊंच पद पाने वाली जगदम्बा गाई जाए, इसलिए सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा। पवित्र जो पवित्र रहने वाली कन्याएं माताएं हैं वो षष्टि पर राज्य करेंगी। अभी की जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, इसका गायन शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में गीता मंदिरों का गायन है। जो गीता मंदिर आज भी गांव गांव में शहर शहर में बने हुए हैं, गीता माता कोई और माता नहीं है, सब धर्म ग्रंथों की माता है। सब धर्म ग्रंथों की माता माने सब धर्मों की माता माने जगदम्बा। यज्ञ के आज में भी वही माता थी जिसके लिए मुरली में बताया गया, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बनकर के बैठती थी। हम समझते थे, हम माने कौन समझते थे, मम्मा बाबा, हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आ गई। उनमें बाबा प्रवेश करते थे, ये भी बोला माना कोई एक भाई था, कोई एक माता थी जिनमें बाबा शिव बाबा प्रवेश करके सारा पार्ट बजाते थे। वो ही आज वाली आत्मा जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं तो फिर ये अगले आते, जो आज में सो अंत, आज में भी वो थे, और जब सृष्टि में नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया का अंत होगा, नई दुनिया की शुरुआत होगी, तो अंत में भी वो फिर प्रत्यक्ष होते हैं। ये बीच का टाइम चल रहा है जिसमें उनको गुप्त पांडवों के रूप में पार्ट उसके बारे में बाबा ने बोला हुआ है कि तुम बच्चे अपनी संस्था का नाम रखना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मुरली में बोला, अंग्रेजी में बोला गॉडली यूनिवर्सिटी, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी नाम रखना, और वो शब्द हटा देना प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शब्द,
मतलब आ शब्दों प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शब्द
हटा देना, हटा देना, अगर नहीं हटावेंगे तो वो तुमसे आके लड़ेंगे, ये भी बोला। इसलिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शब्द हटा देना। तो आगे फिर बोला है जब तुम ये शब्द हटा देंगे बोर्ड पर लिखेंगे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो आगे चल करके सब सेंटर पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारी दुनिया में ये गॉडली यूनिवर्सिटी खुलेगी, और सारी दुनिया में एक ही सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला होगा। बीच के कोई टीचर नहीं होंगे, न कोई उनको पूछेगा, न कोई मानेगा। इसका प्रूफ अभी भी आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालयों में अथवा उससे एफिलिएटेड जो गीता पाठशालाएं हैं उनमें ये देखा जा सकता है कि जहां भी क्लास चलेगा तो उस क्लास में सिर्फ बाबा की कैसेट सुनाई जाएगी, डायरेक्ट मुझसे बोली हुई, या तो वीसीडी टीवी पे दिखाई जाएगी या डीवीडी टीवी पे दिखाई जाएगी, कोई व्यक्ति उसको क्लैरिफिकेशन नहीं करता। इसलिए मुरली में बोल भी दिया है तुम्हारी तीन प्रकार की पढ़ाई तीन प्रकार से होती है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई, सेकंड क्लास पढ़ाई और थर्ड क्लास पढ़ाई है मुरली हाथ में लेना और पढ़ना और दूसरों को सुनाना, ये थर्ड क्लास पढ़ाई है। और तुम्हारी सेकंड क्लास पढ़ाई है जो मुरली बाबा ने चलाई वो मुरली टैप रिकॉर्डर में भरी हुई, क्योंकि जो सुनाएगी उसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं कर सकता।
लेकिन बंद करके तो वो कैसेट बंद करके तो मिक्सचरिटी कर रहे हैं ना एडवांस में भी,
तो वो सुना के कर रहे हैं, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं करता, खट्टा दबा दिया फिर अपना क्लेरिफिकेशन देना शुरू कर दिया, तो समझ लो एडवांस पार्टी में भी वो असुर घुसे हुए हैं बीज रूप में,
वही जरूरी है।
हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए।
हाँ,
बाबा की वाणी यूं की त्यों सुनानी चाहिए। हाँ, कोई ट्रांसलेशन कर सकता है, एक्यूरेट लिटरल ट्रांसलेशन होना चाहिए। इसलिए वो टैप रिकॉर्ड की जो वाणी है वो सिर्फ आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में सुनाई जाती है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वो ब्रह्मा बाबा के टैप ही खत्म कर दिए। ब्रह्मा बाबा के जो टैप है मुख से बोले हुए वो टैप सिर्फ चुने चुनाए काट काट करके बीच बीच में से 4-6-8 टैप है जिनमें भर करके रख दिए हैं, वो लोगों को दे दिए जाते हैं। ब्रह्मा बाबा की जो कैसेट है वो कैसेट बूढ़ी भाषा में बोली गई, जैसे बूढ़े आदमी के मुख में दांत नहीं होते हैं कैसे करके थोड़ा बोलता है ना, तो जिसको प्रैक्टिस होती है वो घर का व्यक्ति ही समझ सकता है, बाहर का आदमी नहीं समझ सकता। तो ऐसा देख करके ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने वो कैसेट ही खत्म कर दी। और रही बात गुलजार दादी में जो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके वाणी सुनाती है, वो वाणी शाम को 7-8 बजे से शुरू होती है और सवेरे को 5 बजे तक चलती है। शाम को 7-8 बजे शुरू होती है और सवेरे के 6-7 बजे तक चलती है, तो 8-10 या 12 घंटे चलाई हुई वाणी उसको फिर कम से कम 2 या 3 या 4 घंटे में भरा जाता है। तो 4 घंटे की अव्यक्त वाणी आज किसी को पढ़ने का टाइम सुनने का टाइम नहीं, किसी को सुनने का टाइम नहीं है। और ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में भी कोई भी अव्यक्त वाणी ब्रह्मा के गुलजार दादी के मुख से डायरेक्ट चलाई हुई कैसेट में सुनाता नहीं है, तो एक्यूरेट वाणी वो ब्रह्मा की भी नहीं मिलती। वो एक्यूरेट वाणी न मिलने का कारण ये है कि उस वाणी को प्रिंट करके फिर पढ़ के सुनाया जाता है, और प्रिंट करने में क्या होता है, जो चाहा सो उन्होंने प्रिंट किया, जो नहीं चाहा वो कट कर दिया। तो न बाबा की साकार मुरली कैसेट में सुनने को मिलने का चांस रहा, और जो अव्यक्त वाणी है ब्रह्मा की गुलजार दादी के द्वारा चलाई हुई वो भी सुनने का किसी को चांस नहीं है। इसलिए देहधारी गुरुओं को पूरा मौका मिलता है कि बाप दादा की वाणी में अपनी मनमत मिक्स कर करके सुनाना। तो जैसे बाबा मुरली बोलते हैं द्वापर की याद में शास्त्र फिर भी कुछ सच्चे थे, अभी तो देहधारी गुरुओं के द्वारा उन शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करते करते व्याख्या करते करते बिल्कुल ही तामसी बन गए। इसलिए बोला है कागज में लिखी हुई मुरली पढ़ना या सुनना वो है थर्ड क्लास,
थर्ड क्लास क्लास अंदर,
और टैप रिकॉर्डर में भरी हुई सुनना है सेकंड क्लास। हाँ, डायरेक्ट है ना, और नहीं नहीं, और वीसीडी या डीवीडी के द्वारा जो टीवी में देखी जाती है उसमें एक्सप्रेशन भी मिलते हैं देखने को, किन व्यक्तियों के द्वारा किस स्थान पर वो वर्सन्स सुनाए जा रहे हैं वो भी देखने को मिलता है। तो स्थान, व्यक्ति और माहौल, ये तीनों की जानकारी मिलती है, तो वो है गुड सेकंड क्लास। और फर्स्ट क्लास वाणी है बाबा, उसके लिए तथा कथित ब्राह्मण उनका ये कहना है कि फर्स्ट क्लास वाणी हमने सुनी, अब तुमको सुनने का चांस नहीं है, तुम चाहो तो हमसे सुन लो। तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग बैठो, तुम संग श्वासों श्वास श्वास साथ निभाऊं, ये हमारा पार्ट था, अब तुम में से किसी का पार्ट नहीं। असली आप तुम स्वीकार कर लो कि हम राजा बनने वाले हैं जन्म जन्मांतर, और तुम सब हमारी प्रजा बनने वाले हो, दास दासी बनने। इसलिए अभी खुशी खुशी से हमारे बर्तन साफ करो और हमारे कपड़े साफ करो, और बाहर की दुनिया में धन कमा कमा करके लाओ और हमको देते रहो। बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ मैं कल्याणकारी हूं, मैं आकर के स्वर्ग की स्थापना करता हूं और तुम बच्चों के द्वारा कराता हूं, कोई मनुष्य मात्र स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता। शिवबाबा कहते कोई स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता, मैं करता हूं। और गुरु लोग कहते हैं भगवान आता है ज्ञान सुना के चला जाता है, अब स्वर्ग की स्थापना हम दीदी दादी दादाओं में से त्रिमूर्ति बनकर के हम करेंगे, और कहीं भी भगवान नहीं आता है। आओ मेगा प्रोग्राम में पैसे इकट्ठे करो और हम त्रिमूर्ति के चित्र छपाओ, पोस्टरों चित्र छपाओ, अपना पैसा खर्च करो और सफेद कपड़े पहन करके पांडाल भर दो, शामियाना बनाया जाता ना बड़ा, दूर दूर से बसे भर के आओ, ट्रेने रिजर्वेशन करा के आओ और मेगा प्रोग्राम करो और हम त्रिमूर्ति की प्रत्यक्षता करो। आखिर त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है ना, त्रिमूर्ति शिव जयंती कैसे मनाएंगे, तीन मूर्तियां प्रतिष्ठित तो होंगी ना, इसलिए पोस्टरों में ऊपर शिव और नीचे शंकर भगवान बनकर के बैठे हैं, हर हर पोस्टर में कुमार गदा जी
शंकर स्थान।
हम शंकर पार्टी का भी संहार करने वाले हैं, शंकर का पार्ट हमारा है, कोई शंकर अलग से नहीं, आत्मा तीनों पार्ट बजाती है, ब्रह्मा के रूप में सदगुणों की स्थापना करती है, शंकर के रूप में असुरों का विनाश करती है और विष्णु के रूप में पालना करती है। तो पार्ट हम बच्चों का है, इसलिए शिवो हम, शिव की मूर्ति हम हैं और शिव की मूर्ति कोई नहीं है। और बाप मुरली में क्या कहते हैं, बाप मुरली में कहते हैं माया मेरी बेटी है, बेटी कहो कुमारिका कहो बात एक ही है। तुम कहेंगे कि बाप आया हुआ है नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, माया कहेगी नहीं ये हो नहीं सकता, कोई बाप नहीं हो सकता, बाप तो शिव ज्योति बिंदु निराकार होता है। तो ये लड़ाई राम रावण की चल रही है, ये बाहर की दुनिया की लड़ाई नहीं है, ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में शूटिंग हो रही है। ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी श्रेष्ठ ब्राह्मण जो थोड़ी सी संख्या में होते हैं, उनकी लड़ाई शास्त्रों में दिखाई गई, इस समय की यादगार है, त्रेता युग में कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती। टोली, टोली को भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, टोली टोली तो यहाँ कहते हैं और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, प्रसाद, प्रसाद माना क्या, प्रसन्नता। तो बाबा का ज्ञान सुनने से प्रसन्नता होती है या ये थोड़ा थोड़ा खाने से प्रसन्नता होती है, ज्ञान की टोली है ना। तो अभी भक्ति मार्ग की सारी रस्म भूल जाओ, नहीं तो मुरली में बोला है जिनमें भक्ति के संस्कार रह जावेंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा।